मेरे प्रिय मित्रों, आज 1 अक्टूबर 2019 को मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल AFEIS के इस लाइफ मैनेजमेंट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल मैंने रामचरितमानस, महाभारत और गीता के बारे में आपसे कुछ बातें की थी, तो मुझे लगा कि गीता से अगर आज के लाइफ मैनेजमेंट की शुरुआत की जाए तो शायद बात उससे जुड़ जाएगी और गीता के बारे में आप लोगों को एक यूं कह लीजिए कि फील, जिसे आप कहते हैं कि थोड़ा सा एहसास, थोड़ा सा अनुभव या उसके सार की भी जानकारी मिल जाएगी। तो मैं आज गीता के एक श्लोक के माध्यम से कुछ बातें आपसे करने जा रहा हूं। तो आइए पहले श्लोक को देख लेते हैं। ये गीता का श्लोक है। श्लोक है, न कृतत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभाव वस्तु प्रवर्तते। ये संस्कृत का श्लोक है, जानते हैं आप। दोस्तों, इसका अर्थ है कि प्रभु, प्रभु यानी कि मालिक, प्रभु यानी कि ईश्वर, जो भी आप कह लीजिए, कि प्रभु न तो मनुष्यों के कर्तापन की सृष्टि करते हैं। अब देखिए कि क्या बात कही जा रही है। मुझे लगता है कि बहुत गहरी बात है और बहुत विचार करने की बात है। वो कह रहे हैं कि जो प्रभु है, जिसे हम ईश्वर कहते हैं, वो न तो कर्तापन की रचना करता है, न कर्मों की रचना करता है और न कर्म फलों की रचना करता है। गीता की भाषा कुछ इसी तरह की है। कर्तापन की रचना करता है, इसका मतलब है कि कौन करेगा इसके बारे में वो कुछ भी डिसाइड नहीं करता, ईश्वर। और न वो इस बात का डिसाइड करता है कि कौन कौन से काम होंगे, न कर्मों की रचना करता है, न कर्तापन की रचना करता है। इस धरती पर कितने तरह के काम होंगे, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। उन कामों को कौन कौन करेगा, इससे भी उसका कोई लेना देना नहीं है। और फिर है, न कर्म फलों की रचना करते हैं। और जब कौन काम करेगा तो उसको उसके बदले में क्या फल मिलेगा, उसको कितना मिलेगा, वह सफल होगा या नहीं होगा, वह इसकी भी रचना नहीं करता है। अब आप देखिए कि कितनी गहरी बात उन्होंने कही है गीता में कृष्ण ने। वो कह रहे हैं कि जिसे आप भगवान कहते हैं, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है कि इस धरती पर कितने तरह के काम होंगे, फिर उन काम को कौन कौन करेगा, और फिर उन काम के बदले में किन किन को क्या क्या मिलेगा, यानी कि किन्हें फल मिलेगा, किन्हें फल नहीं मिलेगा, कौन सफल होंगे, कौन असफल होंगे, इससे ईश्वर का कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, मुझे लगता है कि ये बात सुनकर के आप थोड़ा सा चौंक गए होंगे, थोड़े सजग भी हो गए होंगे, क्योंकि हमारी जो भारतीय चेतना है वो डेफिनेटली ईश्वर को इसी रूप में स्वीकार करती है कि संसार का संचालन ईश्वर कर रहा है, वही कर्म फल का निर्धारण करता है, उसी ने ही हमारे भाग्य को लिखा है और जैसा जैसा हमारे भाग्य में लिखा गया है वैसा वैसा ही सब कुछ होगा। मैं यहां देखिए स्वीकार्य और अस्वीकार्य की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां गीता की बात कर रहा हूं। मैं क्या समझता हूं, किस बात को मानता हूं, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो गीता का जो दर्शन शास्त्र है, जो उसके दर्शन का सार है, केवल वो आपके सामने रख रहा हूं। तो फिर ये सब होता कैसे है, संसार चल कैसे रहा है, इसके लिए गीता देखिए अगली पंक्ति में क्या कहते हैं कि सारे कार्य प्रकृति के नियमों के या प्राकृतिक स्वभाव के अनुसार हो रहे हैं। मतलब इस धरती पर जो कुछ भी हो रहा है, जितनी भी घटनाएं घटित हो रही हैं, वो प्रकृति के नियमों के अधीन हो रही हैं। वो एक सिस्टम बन गया है और ये सिस्टम भी किसका है, ये प्रकृति का सिस्टम है। देखिए, दो सिस्टम होते हैं, एक प्रकृति का सिस्टम है, दूसरा समाज का सिस्टम है। तो जो प्रकृति का सिस्टम है वो यूं कह लीजिए कि सबसे स्थायी सिस्टम है, क्योंकि प्रकृति के सिस्टम को किसी ने बनाया नहीं है, ये सेल्फ इवॉल्व है, ये खुद ही बना है। और जो चीज खुद ही बन गई है तो सीधी सी बात है कि वो अपना काम कर रही है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। वहां आप अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ी करेंगे तो उस गड़बड़ी का असर हो जाएगा, थोड़ा सा आप उसमें कुछ सहयोग दे देंगे तो वो सहयोग का असर हो जाएगा, अदरवाइज जो पूरा का सिस्टम जो है ना वो ऑटोमेटेड है, स्वचालित सिस्टम है, उसके तहत तो वो हो रहा है। अब देखिए कि प्रकृति में जरा सी गड़बड़ी होती है और आपको तुरंत रिएक्शन दिखाई दे जाएगा। वर्षा ज्यादा हो गई, बाढ़ आ जाएगी, गर्मी ज्यादा हो गई, अकाल पड़ जाएगा या और कुछ दूसरा हो जाएगा, मतलब प्रकृति के नियम तो बिल्कुल फिक्स है ना। जमीन है, जमीन में बीज गिरे हुए हैं, हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो चटियल मैदान है, उस पे बारिश हुई, वर्षा की बूंदें पड़ी, कुछ दिनों में वही चटियल मैदान हरे मैदान में तब्दील हो गया, यानी कि उसमें जो बीज थे जैसे ही उन बीजों को नमी मिली प्रकृति के नियम के तहत वो अंकुरित हो गए और पूरी के पूरा जो चटियल मैदान था, धूल धूसरित जो मैदान था, वो हरियाली में परिवर्तित हो गया। ये प्रकृति का नियम है, यानी कि प्रकृति के नियम पूरी तरह से कार्य कारण संबंध पर आधारित हैं। प्रकृति में अगर कुछ भी घटना घटित हो रही है तो मान करके चलिए कि उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। और आप जानते हैं कि विज्ञान की भी परिभाषा यही है कि विज्ञान यही मानता है कि अगर कोई घटना घट रही है तो डेफिनेटली उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा। ये प्रकृति का नियम है। फिर वो क्या कह रहे हैं, या प्राकृतिक स्वभाव के अनुसार हो रहे हैं। ये जो प्राकृतिक स्वभाव है, मुझे ऐसा लगता है कि यह मनुष्य के लिए कहा गया है। एक तो प्रकृति है, वनस्पति जगत है, जीव जगत है, लेकिन मनुष्य को थोड़ा सा अलग हम मान करके चलते हैं, हालांकि वो भी प्रकृति का ही हिस्सा है। और अलग इसलिए मान करके चलते हैं कि उसके पास चेतना है, सोचने समझने की क्षमता है, जिसके कारण वो बहुत सी चीजों को बदल सकता है, बहुत सी चीजों पर उसका नियंत्रण है। तो इसीलिए यहां जो अलग बात कही गई है कि प्राकृतिक स्वभाव के अनुसार हो रहे हैं, यानी हम सबका एक स्वभाव है, सबका अपना अपना स्वभाव है। तो हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह हमारे स्वभाव के अनुसार हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि मुझे क्रोध बहुत आता है, मान लीजिए कि मैं बहुत ही गुस्सैल किस्म का व्यक्ति हूं, तो सीधी सी बात है कि मेरे साथ जो घटनाएं घटित होंगी, मेरे इस स्वभाव का उसमें सबसे बड़ा रोल होगा। मैं अगर जाकर के जगह जगह पर गुस्सा हो रहा हूं तो दूसरे तो मुझे प्यार नहीं करेंगे, वो भी गुस्सा होंगे, वो मुझे दुत्कारेंगे या चुपचाप उठ करके चले जाएंगे या मुझसे उनका झगड़ा हो जाएगा, इसी तरह की घटना होगी ना। और अगर आप बहुत प्रेम से भरे हुए हैं, बहुत अच्छे से बोल रहे हैं, तो आप जिससे भी जाएंगे बहुत अच्छे से बात करेंगे, दूसरों का सहयोग करेंगे, आपसे भी लोग अच्छे से बात करेंगे, लोग आपका भी सहयोग करेंगे। तो अब आप देखें कि मेरे साथ जो भी घटना घट रही है वो मेरे अपने स्वभाव के अनुकूल घट रही है, इसीलिए उसका नाम है स्वभाव, यानी स्वयं का भाव। अब यहां भाव को थोड़ा सा आप विस्तार दे सकते हैं, आप यूं कह लीजिए कि विचार है ना, हालांकि विचार और भाव एक दूसरे के पर्याय नहीं है, लेकिन यूं कह लीजिए कि व्यक्ति के साथ जो कुछ भी घटित होता है या व्यक्ति अपने जीवन में जो कुछ भी हासिल करता है या व्यक्ति जो जिस तरह का जीवन जीता है वह निश्चित तौर पर केवल उसके स्वभाव के अनुसार ही होता है। अगर बहुत गहराई में आप जाकर के सोचेंगे तो आपको इस तथ्य की सच्चाई मालूम पड़ेगी। तो अब आप देखिए कि उन्होंने ईश्वर को किस रूप में परिवर्तित कर दिया है, यानी कि आप कह सकते हैं कि गीता में ये जो वाक्य है ये कहीं ना कहीं यह कहता हुआ मालूम पड़ रहा है कि इनफैक्ट ये जो प्रकृति है यही अपने आप में ईश्वर है, और यह प्रकृति ही इस पूरे के पूरे जगत का संचालन कर रही है, और चूंकि हम भी उसी के एक हिस्से हैं इसलिए हमारा संचालन भी प्रकृति ही कर रही है, और इसी प्रकृति को हम ईश्वर मानते हैं। और आप अपने वैदिक ग्रंथों के प्रार्थनाओं को देखिए तो जितनी वैदिक प्रार्थनाएं की गई हैं आरंभ में वो सब के सब प्रकृति के प्रति ही तो की गई हैं, चाहे वो सूर्य से प्रार्थना की जा रही हो, चाहे वो वर्षा से प्रार्थना की जा रही हो, चाहे वो वायु से प्रार्थना की जा रही हो, चाहे वो चंद्रमा से प्रार्थना की जा रही हो, वृक्षों से प्रार्थनाएं की जा रही हो, ये सब के सब प्रकृति के ही अंग हैं। तो मुझे लगता है मित्रों कि जब हम इस विचार और इस भाव को ग्रहण कर लेते हैं तो सच पूछिए तो हमारा अपने ऊपर विश्वास बहुत गहरा हो जाता है। अपने ऊपर जैसे ही आपका विश्वास गहरा होता है स्वाभाविक सी बात है कि हमारी जो ऊर्जा है वो बहुत तेजी के साथ विकसित होती है और बहुत स्थायी रूप से हमारे अंदर बनी भी रहती है। तो दोस्तों आज के लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही, आप सबकी अनुमति चाहूंगा। नमस्कार।